एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी की द जीन एन इंटीमेट हिस्ट्री। ये एक ऐसी किताब है जो विज्ञान, इतिहास और हमारी अपनी पहचान को एक साथ पिरोती है।
बिल्कुल, नमस्कार। और ये शीर्षक ही देखिए, जीन एक अंतरंग इतिहास। अंतरंग मतलब इंटीमेट।
ये कोई सूखी वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं है, ये हमारे होने की कहानी है, हमारी पहचान, हमारे परिवार, हमारा कल।
हाँ, और आज के दौर में तो ये बातें और भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं, है ना?
सही कहा। रोज सुनते हैं हम जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में, बीमारियों के पहले से पता लगने के बारे में।
और जीन एडिटिंग, ये तो जैसे साइंस फिक्शन सच हो गया है।
बिल्कुल, तो ये समझना जरूरी है कि ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये किताब वो समझ बनाने में मदद करती है। ये एक तरह से हमें तैयार करती है आने वाले बदलावों के लिए।
इस बातचीत में हमारे साथी हैं लेखक सिद्धार्थ मुखर्जी।
और ये जानना भी जरूरी है कि वो कौन है। सिर्फ लेखक नहीं, वो
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, कैंसर स्पेशलिस्ट, बायोलॉजिस्ट है, रिसर्चर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो उनके पास वो जमीनी हकीकत की समझ है, लैब की भी और क्लिनिक की भी।
और उनकी लिखने की कला, पिछली किताब थी द एम्परर ऑफ ऑल मैलेडीज, कैंसर पर उसे पुलित्जर मिला था।
हाँ, उनकी यही खासियत है, मुश्किल वैज्ञानिक चीजों को भी कहानी की तरह बना देते हैं, पढ़ने में मजा आता है, बोझिल नहीं लगता।
और इस किताब में ये अंतरंग वाला पहलू और भी गहरा है। मुखर्जी ने अपनी पारिवारिक कहानी को इसमें बुना है।
हाँ, ये बहुत अहम है। उनके परिवार में, जैसा उन्होंने बताया है, मानसिक बीमारियों का इतिहास रहा है, सिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये सिर्फ एक बाहरी नजरिया नहीं है,
ये उनका अपना सफर भी है अपनी जड़ों को समझने का। बिल्कुल, तो उनका नजरिया बहुआयामी है, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इतिहासकार और हाँ, एक परिवार का सदस्य। ये चीज किताब को बहुत मानवीय और जरूरी बना देती है।
तो फिर इस किताब का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्या बताना चाहती है?
देखिए, एक तरह से ये जीन के विचार की जीवनी है। कैसे ये एक धुंधला सा आइडिया था और कैसे वो एक असल अड़ू डीएनए बना जिसे हम आज पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं
और बदल भी सकते हैं।
हाँ, और यही सबसे बड़ा सवाल है। किताब पूछती है, जीन है क्या, कैसे खोजा हमने इसे, और अब जब हम इसे बदल सकते हैं तो हम क्या बन जाएंगे?
ये तो बहुत बड़े सवाल हैं।
हैं, और किताब हमें एक लंबी यात्रा पे ले जाती है, अरस्तु के पुराने विचारों से शुरू करके मेंडल के मटर के दानों तक।
हाँ, मेंडल, स्कूल में पढ़ा था
वही। फिर 20वीं सदी आती है जिसमें यूजेनिक्स का वो डरावना दौर भी है।
ओ हाँ, यूजेनिक्स।
फिर डीएनए की खोज, डबल हेलिक्स, फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब पूरा इंसानी जेनेटिक कोड पढ़ना, और फिर आज की क्रिस्पर तकनीक। ये पूरी कहानी है हमारी खुद की बनावट को समझने की।
तो ये सिर्फ साइंस की कहानी नहीं हुई?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके तीन पहलू हैं। पहला, हाँ, वैज्ञानिक खोज की कहानी, जीन क्या है, कैसे काम करता है,
ठीक है।
दूसरा, इसका सामाजिक और राजनीतिक इतिहास, कैसे इस ज्ञान का इस्तेमाल हुआ और कैसे भयानक दुरुपयोग भी हुआ। यूजेनिक्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एक चेतावनी की तरह।
और तीसरा?
तीसरा है नैतिक और दार्शनिक सवाल, अब जो हमारे हाथ में ताकत आई है उससे जुड़े सवाल। क्या हमें जेनेटिक बीमारियां ठीक करनी चाहिए, कहां तक इलाज है और कहां से इंसान को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू होती है।
चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, किताब के सफर के कुछ खास पड़ावों को देखते हैं। शुरुआत कहां से होती है?
शुरुआत होती है बहुत पहले से। अरस्तु जैसे दार्शनिक सोचते थे कि माता पिता से बच्चों में गुण कैसे जाते हैं। डार्विन भी परेशान थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि यह होता कैसे है।
और फिर आए मेंडल।
हाँ, ग्रेगर मेंडल 1860 के दशक में अपने बगीचे में मटर उगाते हुए उन्होंने आनुवंशिकता के नियम खोज निकाले, बताया कि गुण अलग अलग पैकेट या इकाई में आगे बढ़ते हैं। बाद में इन्हें जीन कहा गया।
लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके काम पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया सालों तक।
बिल्कुल, दशकों तक वो काम अनदेखा रहा। मुखर्जी इस पर लिखते हैं, शायद दुनिया तब तैयार नहीं थी इस विचार के लिए।
फिर क्या हुआ?
20वीं सदी की शुरुआत में तीन अलग अलग वैज्ञानिकों ने मेंडल के काम को फिर से खोजा, और फिर थॉमस हंट मॉर्गन जैसे लोग आए। उन्होंने फल मक्खियों पर प्रयोग किए।
हाँ, वो ड्रोसोफिला।
वही, मॉर्गन और उनकी टीम ने दिखाया कि ये जीन क्रोमोसोम पर एक लाइन में होते हैं। तो अब आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स एक पक्का विज्ञान बन रहा था। लेकिन
पढ़े और बुरे खत्म हो जाए,
सुनने में ही भयानक लगता है।
और ये सिर्फ सोच नहीं रहे, फ्रांसिस गैल्टन जैसे लोगों ने इसे बढ़ावा दिया। किताब बहुत साफ बताती है कि सिर्फ खराब साइंस नहीं था, ये उस समय के अधूरे वैज्ञानिक ज्ञान और समाज में गहरे बैठे पूर्वाग्रहों का एक जहरीला कॉकटेल था।
और इसका असर
बहुत बुरा, अमेरिका में जबरन नसबंदी हुई और फिर नाजी जर्मनी ने तो इसे नस्लीय सफाई का आधार बना दिया। ये विज्ञान के रास्ते से भटकने का और सामाजिक पूर्वाग्रहों के साथ मिल जाने का सबसे भयानक उदाहरण है। मुखर्जी इस पर बहुत जोर देते हैं।
ये वाकई एक चेतावनी है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। जीन की खोज हो गई, पर ये बना किस चीज का है, ये सवाल आया होगा।
हाँ, बहस थी कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या डीएनए। फिर ऑज़वाल्ड एवरी के प्रयोग आए जिन्होंने इशारा किया कि शायद ये डीएनए है, और फिर वो मशहूर रेस शुरू हुई डीएनए का स्ट्रक्चर पता लगाने की।
बिल्कुल, वॉटसन, क्रिक, विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन। मुखर्जी फ्रैंकलिन के योगदान को, खासतौर पर उनकी फोटोग्राफ 51 को पूरा महत्व देते हैं। उसी एक्सवे तस्वीर से वॉटसन और क्रिक को डबल हेलिक्स का आइडिया आया।
1953 की ये खोज तो जैसे सब कुछ बदल देने वाली थी।
हाँ, जिंदगी के ब्लूप्रिंट को पढ़ने की चाबी मिल गई थी। अब अगला कदम था इस कोड को समझना, डीएनए के वो चार अक्षर ATCG कैसे प्रोटीन बनाने का निर्देश देते हैं।
और इसी समझ से जेनेटिक इंजीनियरिंग का रास्ता खुला।
सही, वैज्ञानिकों को ऐसी कैंचियां मिली, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिनसे डीएनए को खास जगहों से काटा जा सकता था। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक आई, जिससे एक जीव का जीन दूसरे में डालना मुमकिन हुआ।
इससे तो बहुत उम्मीदें जगी होंगी।
जबरदस्त उत्साह था, बीमारियों का इलाज, इंसुलिन जैसी दवाएं बनाना। लेकिन डर भी पैदा हुआ, अनजाने खतरे, कहीं जैविक हथियार ना बन जाएं।
तो वैज्ञानिकों ने इस पर बात की।
हाँ, ये अहम है।
असीनुमान जैसे सम्मेलन हुए जहां वैज्ञानिकों ने खुद ही इन नई ताकतों के नैतिक पहलुओं पर बहस की, नियम बनाने की कोशिश की। ये दिखाता है कि जिम्मेदारी का एहसास था।
फिर आया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, पूरा इंसानी जेनेटिक कोड पढ़ने का महाअभियान।
हाँ, 1990 से 2003 तक चला।
हाँ,
बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नतीजे भी चौंकाने वाले थे।
हाँ,
पता चला कि हमारे पास जीन उतने नहीं हैं जितने सोचे थे, करीब 21,000 ही।
बस, मुझे लगा था लाखों होंगे।
हाँ, और ये भी पता चला कि जीन का काम करना बहुत जटिल है, सीधा सीधा नहीं है। यहीं पर एपिजेनेटिक्स का जिक्र आता है।
एपिजेनेटिक्स, ये क्या है?
इसे ऐसे समझें, डीएनए आपकी रेसिपी बुक है, एपिजेनेटिक्स वो स्टिकी नोट्स हैं जो माहौल, खान पान, तनाव वगैरह के असर से कुछ रेसिपी पर चिपक जाते और बताते हैं कि इन्हें इस्तेमाल करना है या नहीं। मतलब रेसिपी बदले बिना उसका इस्तेमाल बदल जाता है।
अच्छा, तो ये नेचर वर्सेस नर्चर वाली बहस को और पेचीदा बना देता है। बिल्कुल, ये साफ करता है कि हम सिर्फ अपने जीन के गुलाम नहीं हैं, हमारा माहौल, हमारी आदतें भी बहुत मायने रखती हैं।
और अब हम आते हैं आज के जमाने पर, क्रिस्पर कैस9। ये नाम बहुत सुनने में आता है।
हाँ, क्रिस्पर, ये जीन एडिटिंग की एक क्रांतिकारी तकनीक है। पहले जीन बदलना बहुत मुश्किल, महंगा और सटीक नहीं होता था। क्रिस्पर ने इसे बहुत आसान, सटीक और सस्ता बना दिया है। किताब इसे अच्छे से समझाती है। ये डीएनए को लगभग कहीं से भी काटने और बदलने की ताकत देती है।
इससे तो जबरदस्त इलाज मुमकिन हो सकते हैं।
उम्मीदें बहुत हैं, सिकल सेल एनीमिया, हंटिंगटन जैसी कई जेनेटिक बीमारियों के इलाज की। लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़े नैतिक सवाल भी उठ खड़े हुए हैं।
जैसे कि?
जैसे, क्या हमें इंसानी भ्रूण के जीन बदलने चाहिए? इसे जर्म लाइन एडिटिंग कहते हैं। अगर ऐसा किया तो वो बदलाव अगली पीढ़ियों में भी जाएंगे, क्या ये सही है?
ये तो बहुत बड़ा सवाल है।
और इलाज, थेरेपी और इंसान की क्षमता बढ़ाना, एनहेंसमेंट के बीच क्या फर्क है? कहाँ लाइन खींची जाए? क्या भविष्य में अमीर लोग डिजाइनर बेबी बनवा सकेंगे? इससे समाज में और असमानता बढ़ेगी?
मुखर्जी इन सवालों का जवाब देते हैं।
वो सीधे जवाब नहीं देते, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वो अपनी पारिवारिक कहानी के जरिए भी इन दुविधाओं को सामने लाते हैं।
तो इस पूरी कहानी से, इस किताब से कुछ मुख्य संदेश क्या निकलते हैं, क्या है की थीम्स?
पहला तो यही कि जीन की प्रकृति दोहरी है, वो सूचना भी है, कोड भी है, और वो एक भौतिक चीज डीएनए भी है। हमारी समझ कैसे बदली और इससे हमें कैसी ताकत मिली, ये किताब दिखाती है।
दूसरा, आपने बताया विज्ञान और समाज का रिश्ता।
हाँ, ये बहुत अहम है। जेनेटिक्स का इतिहास, खासकर यूजेनिक्स का उदाहरण, दिखाता है कि विज्ञान समाज से कैसे प्रभावित होता है और समाज को कैसे बदल सकता है। ये सबक आज भी बहुत जरूरी है।
तीसरा, कि वैज्ञानिक खोज कोई सीधी लाइन में नहीं होती।
बिल्कुल, ये इंसानी कहानी है, इसमें जुनून है, कॉम्पिटिशन है, सहयोग है, गलतियां हैं और किस्मत भी। किताब वैज्ञानिकों को रोबोट की तरह नहीं, जीते जागते इंसानों की तरह दिखाती है।
चौथा मुद्दा, आपने सामान्य की परिभाषा पर सवाल उठाया था।
हाँ, जैसे जैसे हम जेनेटिक विविधता को समझ रहे हैं, हमें सोचना होगा कि क्या वाकई कोई सामान्य जीनोम होता है? किसे हम बीमारी कहें जिसे ठीक करना है, और किसे सिर्फ इंसानी फर्क माने? और यही वो खतरा है कि कहीं लोग परफेक्शन के पीछे ना पड़ जाएं।
पांचवा, नेचर और नर्चर का वो जटिल डांस।
सही, जीन हमारी स्क्रिप्ट हो सकते हैं लेकिन पूरी कहानी नहीं लिखते। हमारा माहौल, हमारे चुनाव, एपिजेनेटिक्स, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम क्या बनते हैं। हम कठपुतलियां नहीं हैं।
और छठा, जेनेटिक ज्ञान की ताकत और उसके खतरे।
हाँ हाँ, ये ज्ञान हमें सशक्त बना सकता है, अपनी सेहत के बारे में बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है, लेकिन ये चिंता और भेदभाव का कारण भी बन सकता है। मुखर्जी अपने परिवार के उदाहरण से दिखाते हैं कि ये जानना कि आप में किसी बीमारी का रिस्क है कितना मुश्किल हो सकता है।
किताब में यकीनन कई यादगार बातें होंगी, कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार जो दिमाग में रह जाते हैं।
हाँ, कई हैं। जैसे एक जगह वो कहते हैं, जिसका मतलब है कि जीन सिर्फ बायोलॉजिकल जानकारी नहीं है, ये कहानी भी है। और जीन का इतिहास असल में ये कहानी है कि हम इंसान खुद को कैसे समझते आए हैं।
ये दिलचस्प है, जीन सिर्फ विज्ञान नहीं, हमारी पहचान का हिस्सा भी है।
बिल्कुल, और यूजेनिक्स पर उनकी एक बात बहुत सोचने पर मजबूर करती है। वो कहते हैं कि जीन बदलने की असली ताकत आने से पहले ही हम में उन्हें सुधारने का घमंड आ गया था। यूजेनिक्स सिर्फ बुरा विज्ञान नहीं था, बल्कि आनुवांशिकता की अधूरी और पूर्वाग्रहों से भरी समझ का नतीजा था।
मतलब खतरा सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, हमारी सोच से भी है।
सही, और भविष्य पर उनका सवाल, अब हम जीनोम को पढ़ ही नहीं लिख भी सकते हैं। तो सवाल ये नहीं कि क्या हम बदल सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हमें बदलना चाहिए और ये तय कौन करेगा।
ये सवाल तो आज सबसे ज्यादा मौजू है।
हाँ, और इंसान की जटिलता पर वो कहते हैं कि हम सिर्फ अपने जीन की अकेली आवाज नहीं, बल्कि जीन कोशिकाओं और माहौल के बीच की एक पूरी सिम्फनी है। यही तालमेल या गड़बड़ी हमें इंसान बनाती है। हर चीज को सिर्फ जीन से नहीं समझा जा सकता।
तो ये सब ज्ञान, ये विचार, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इनका क्या मतलब है? हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो ये हमें अपनी सेहत के बारे में ज्यादा जागरूक और समझदार बना सकता है। आजकल जेनेटिक टेस्टिंग होती है, ये किताब हमें उन टेस्ट के नतीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करती है।
मतलब अगर किसी टेस्ट में कोई रिस्क दिखे तो उसे पत्थर की लकीर ना मान ले।
बिल्कुल, क्योंकि हमारी जीवन शैली, हमारी आदतें, हमारा माहौल भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये किताब उस संतुलन को समझने में मदद करती है।
और परिवार में चली आ रही बीमारियों के बारे में बात करने में भी मदद मिल सकती है।
हाँ, डरने की बजाय जानकारी के साथ डॉक्टर या काउंसलर से बात कर सकते हैं। और समाज में जो बहसें चल रही हैं जीएमओस पर, जीन एडिटिंग पर, उन पर अपनी राय बनाने के लिए एक बेहतर आधार मिलता है।
माता पिता बनने वालों के लिए भी अहम हो सकता है, प्रीनेटल स्क्रीनिंग या भविष्य में जर्म लाइन एडिटिंग जैसी चीजों के बारे में सोचने के लिए।
सही कहा, और शायद सबसे बुनियादी बात यह है कि ये हमें खुद को देखने का एक नया नजरिया देती है। हम न सिर्फ जीन हैं, न सिर्फ माहौल, हम इन दोनों की एक लगातार चलती बदलती बातचीत हैं।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये है कि ये जो जेनेटिक ज्ञान और ताकत हमें मिली है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। हमें इतिहास से सीखना होगा, नैतिक सवालों पर गहराई से सोचना होगा, वरना हम बहुत बड़ी गलतियां कर सकते हैं।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि हम वाकई एक मोड़ पर खड़े हैं। पहली बार शायद हम अपनी एवोल्यूशन की कहानी को खुद लिखने की कगार पर है। आज के हमारे फैसले आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेंगे। ये किताब विज्ञान, इतिहास, निजी कहानी और नैतिकता को जिस तरह मिलाती है, वो हमें इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। और ये सवाल छोड़ जाती है, हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे? समझदारी से।
या।